मेरा सवाल क्या है, सुनते जाओ। नॉन कॉग्निजिबल केस के मामले में परमिशन टू इन्वेस्टिगेट, यानी कौन परमिशन दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए? आंसर आप लोग का ठीक है मजिस्ट्रेट, लेकिन दिस इज नॉट ए कंप्लीट आंसर। आपको बोलना चाहिए मजिस्ट्रेट जिसका कि ज्यूरिस्डिक्शन लगता है केस के ट्रायल के लिए। सो मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, उसके परमिशन से ही नॉन कॉग्निजिबल ऑफ। आप सोचो ना, सिर्फ मजिस्ट्रेट बोल दोगे तो हिंदुस्तान का हर एक मजिस्ट्रेट इंक्लूड हो जाएगा भाई, जिसको ज्यूरिस्डिक्शन है या जिसको ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। गलत कह रहा हूं तो बोलो कि मैं गलत हूं।
नहीं, ठीक।
तो इसीलिए आपको बोलना चाहिए कि मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, उसके लिए। चलिए कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मैं अभी थोड़े क्वेश्चन क्वेश्चन ही खेलने वाला हूँ, आज कोई नया चैप्टर मैं नहीं ले रहा हूँ, इसलिए ये मत सोच के बैठना कि सर नया चैप्टर 6 लेने वाले हैं। सो अभी मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। अभी पीछे का पार्ट में थोड़ा सा कवर कर दे रहा हूँ, तब फिर नया चैप्टर कल से मैं लूंगा, चैप्टर 6। थोड़ा आप
नहीं सर,
लोग समय
हर चैप्टर के बाद ऐसे कर दिया करिए तो रहता है कि नहीं, रिवाइज भी करना है।
तो हर दिन सब पॉसिबल नहीं है, जहां जब हो जाएगा हर एक चैप्टर के एंड की कोशिश
हाँ
करेंगे कि हो जाए, तो आप लोगों को एक चैप्टर एंड होने के बाद कर दिया करेंगे।
जी, चैप्टर एंड के बाद हर दिन तो
चलिए
पॉसिबल
अब एक
नहीं।
क्वेश्चन और आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरिया फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंटरव्यू का क्वेश्चन मान के चलो, एमसीक्यूज नहीं है, सीधा दिमाग में ये डालो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया हिंदी वालों के लिए कह रहा हूं, ट्राइबल एरिया का मतलब, जनजातीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी? क्या होता है जनजातीय क्षेत्र का मतलब? इतनी बार तो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी नहीं रिपीट करेगा, आधे तो आप नर्वस ही रहेंगे, आप लोग पहले ही से नर्वस रहेंगे, क्या पूछ देगा क्या पूछ देगा। अभी एक स्टूडेंट है हमारी, थी नहीं अभी है, अभी वो बिहार जुडिशरी का, उसका प्री का एग्जाम था, प्री का कहता हूँ सॉरी, इंटरव्यू था, प्री अच्छा गया, मेंस अच्छा गया, इंटरव्यू में उससे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे, और वो भी 15 क्वेश्चन पूछे, और 15 के 15 के आंसर उसने दिए, उसने LLM भी कर रखा था कॉन्स्टिट्यूशन से। तो लास्ट में जब 15 क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद जो इंटरव्यू बोर्ड था बोलता है, आपको लगता है किसी ने बता दिया था कि हम यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आप यही क्वेश्चन पूरी तैयारी करके आए हैं? और उसको अच्छे मार्क्स मिले, मतलब अच्छे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 100 में से उसको 70 मार्क्स मिल गए, तो अच्छा मार्क्स कहा जाता है, ऐसा नहीं कि खराब कहा जाता है। 30 मार्क्स के लिए पास होता है इंटरव्यू, लेकिन उसको 100 में से 70 मार्क्स मिल गए थे सिविल जज के एग्जाम में, इंटरव्यू में। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका आंसर हो तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर अपने आप सही जाता रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट पर आप कमांड कर लो, ट्रिक तो अपने आप सब चल जाएगा। अगर सब्जेक्ट पर कमांड है तो कोई एग्जाम नहीं दूर है, और सब्जेक्ट पर ही कमांड नहीं है तो अब क्या कैसे एग्जाम निकालेंगे भाई, कॉमन सेंस की बात है। ट्रिक तो वही काम आता है जहां पर आपका सब्जेक्ट पर कमांड होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह दूं कि हाँ हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए या सिविल जज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर कमांड ही नहीं है, फिर आप अननेसेसरी फालतू में कर रहे हैं, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ट्रिक का मतलब क्या है? ट्रिक का मतलब बस सीधा है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो देखा जाता है। ट्रिक का मतलब होता है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें ताकि हम कट ऑफ लिस्ट में आ जाए, यही ट्रिक होता है। आप 90 मिनट्स के अंदर किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, किसको लिखें ताकि आपका नंबर उतना आ जाए, 150 के अंदर या 100 जो भी है उसके अंदर आ जाए, उस चीज को कहते हैं ट्रिक। तो ट्रिक लिखने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए ना सर, क्या लिखना है क्या आंसर होगा। चलिए बताइए, बहुत सिंपल सा है, अगर देख के बताना, देख के बताओ, सेक्शन 1 के अंदर ट्राइबल एरिया किसको बोलते हैं?
सेक्शन 1 में जो सर चैप्टर 8, 10 और 11 मेंशन किया गया है कि ये चैप्टर उस पे लागू होंगे, नागालैंड।
गलत आंसर है मैडम, ये गलत आंसर है।
तो 6 शेड्यूल है, उसमें तो जनजाति क्षेत्र है नागालैंड।
और कोई बात, और किसको बोल सकते हैं? ट्राइबल एरिया का मतलब क्या है? इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मान के चलिए आपको आंसर कंप्लीट देने की आजादी है, इंटरप्रेट भी कर सकते हो, तभी तो आपका यहाँ, आप मॉक इंटरव्यू में हो समझो, आप सब क्लियर हो जाएगा, या सीरियस ले लो इस चीज को, अब इसको मजाक में नहीं लो, सीरियस ले लोगे तो ये रिविजन हो जाएगा, और नहीं सीरियस लोगे तो ऐसे चला जाएगा।
सर, 21 जनवरी 1972 के पहले जो छठी अनुसूची में थे, और क्या अनुसूची, पैरा 20 में जो दिया, असम जनजाति क्षेत्र दिया गया है सम्मिलित थे, और शिलोंग नगर पालिका के स्थानीय सीमाओं के भीतर जो क्षेत्र थे उन लोग उनको ट्राइबल एरिया मानेंगे।
ये क्वेश्चन बिहार के अंदर आया है 2013 में, मैं बता दे रहा हूँ पहले, ये क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है। और इसके ऑप्शन में था आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपने आंसर दिया वही है, उसी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ दिया हुआ था। आंसर सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, आप लोगों ने रिविजन जरूर किया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस
कौन? बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल।
और बिल्कुल सही है, फर्स्ट शेड्यूल में जो सीआरपीसी के अंदर अवेलेबल है वो, और जो फॉर द टाइम बिंग किसी भी लॉ के अंदर अवेलेबल है वो, सबसे आंसर एक्सपेक्टेड है भाई। अभी खुद क्वेश्चन पूछते हो, आंसर थोड़ा थोड़ा बता दिया करो। नॉन अवेलेबल ऑफेंस का मतलब फिर क्या होता है
सर? एनी अदर ऑफेंस
नहीं है,
एनी अदर ऑफेंसेस जो जिनमें बेल नहीं मिलती।
एनी अदर ऑफेंसेस जिसमें बेल नहीं मिलती, ऐसा नहीं बोल सकते, गलत आंसर है।
एनी अदर ऑफेंसेस व्हिच इज नॉट बेलेबल,
व्हिच इज नॉट बेलेबल,
ये right. बोल सकते हैं, लेकिन ये कभी मत बोलना कि जिसमें बेल नहीं मिलती। Sorry, बेल sir. मिलता है, इट इज ए डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट,
डिस्क्रेशनरी पावर।
हाँ, ये छोटी छोटी मोटी बातें, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद सेक्शन 2C में किस शब्द को डिफाइन किया गया? सेक्शन 2C
कॉग्निजेबल ऑफेंसेस।
हाँ, बिना देखे बताने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तब तो कोई बात नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इन ए कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल केस के मामले में पुलिस को पावर होता है, किस चीज का पावर होता है? इन ए कॉग्निजेबल केस केस किस चीज का पावर होता है? इन्वेस्टिगेशन का, अरेस्ट का, किस चीज का? अभी कोई बोल रहे थे, हाँ कृष्णा बोल रही है, बोलिए।
अरेस्ट विदाउट वारंट सर।
ठीक है, अच्छा कंप्लेंट जो सेक्शन 2D सीआरपीसी में कहा गया है, वो ओरल होना चाहिए या रिटेन होना चाहिए, या दोनों हो सकता है?
दोनों हो सकता है,
दोनों हो सकता है। और जो कंप्लेंट होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है?
दोनों के लिए होता है सर।
और कंप्लेंट के लिए सबसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है? सबसे इसेंशियल, सबसे जरूरी चीज जिसके बिना कंप्लेंट अधूरा या कंप्लेंट कंप्लेंट ही नहीं है?
इसमें प्रेयर होनी चाहिए टू विद अ व्यू टू ऑफ टेकिंग एक्शन।
तो प्रेयर होनी चाहिए, तो किस चीज का प्रेयर करोगे आप
सर? ऑफेंस क्या
सर? ऑफेंस डिस्क्राइब होना चाहिए सर।
एक चीज बताइए, ऑफेंस होना चाहिए या एक्शन होना चाहिए कि दोनों होना चाहिए
सर? एलिगेशन
करके के करके कर, हाँ बोलिए।
एलिगेशन सर, और उस एक्यूज का नाम पता इतना मालूम होना चाहिए सर।
नहीं, कोई जरूरत नहीं है नाम पता मालूम होना चाहिए, गलत आंसर है, गलत आंसर है।
एलिगेशन होना चाहिए वेदर इन द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटन मेड टू द मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन।
मोस्ट इसेंशियल क्या होगा? ये तो आपने सब कुछ बता दिया, मोस्ट इसेंशियल पूछ रहा हूँ बार बार। अभी अभी जितना कचरा करना है कर लो, जितना रहता फैलाना फैला लो, इंटरव्यू में मत करना और प्री में बिल्कुल नहीं करना। हाँ, मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट है ऑफेंस होना चाहिए, यानी ऑफेंस का एलिगेशन होना चाहिए। कंप्लेंट में एलिगेशन होता है, देखिए अब डेफिनेशन निकाल के एन एलिगेशन लिखा है, अब मैं खोल आप लोग देख सकते हैं, एलिगेशन होना चाहिए ऑफेंस का, और वो एलिगेशन इस पर्पस से होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट जो है एज पर द सीआरपीसी उस पर एक्शन ले सके, यानी कोड के प्रोविजन के हिसाब से एक्शन ले सके। ठीक है, अब ये बताइए सेक्शन 2D के तहत किस पार्ट को कंप्लेंट हम नहीं मानते हैं?
पुलिस रिपोर्ट।
रिपोर्ट,
चलिए सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। नाउ इंक्वायरी अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज कंडक्टेड बाय, इंक्वायरी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से कौन कंडक्ट करता है सीआरपीसी के हिसाब से? झोली भर के 500 बार पूछा गया अलग अलग स्टेट में, सब स्टेट में पूछा है, नॉर्थ साउथ सब में पूछा है, हायर लोअर सब में पूछा। नाउ इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू टू, इंक्वायरी जो कंडक्ट करता है मजिस्ट्रेट किस पर्पस से करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, टू द पॉइंट आंसर देना, इंटरव्यू में हो।
To know whether there is a sufficient ground to proceed or not.
नहीं, टेक्निकल आंसर चाहिए मेरे को।
Sir, to decide whether or not there is sufficient ground for proceeding against the accused.
Sir, offense. और टेक्निकल चाहिए, और टेक्निकल चाहिए, टेक्निकल offense, ही बोलना पड़ेगा।
Offense cognizable है या नहीं? Cognizable है या non-cognizable है?
No. इंक्वायरी का पर्पस ये नहीं होता, मैंने बताया भी है आप लोगों को, ऐसे नहीं है कि बिना बताए मैं पूछ रहा
हूँ। इंक्वायरी में सर अगर सर इंक्वायरी जो करते सर उसमें सर ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर, उसको कंफर्म करने के लिए सर इंक्वायरी करते हैं सर।
तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाई ए मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू टू, व्हाट इज द पर्पस, ये हायर जुडिशियरी, हायर जुडिशियल सर्विसेज 2009
यूपी में
पूछा, 2009 का केस है।
ट्रायल को आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं?
ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो कंटिन्यू करने की बात कहाँ हो रही है? नहीं, यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज 2009 का के ये क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, जिनको चेक करना कर लेना, यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज 2009, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाई ए मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू, किस पर्पस से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कंडक्ट करता है, आंसर होगा फाइंड आउट, आंसर होगा फाइंड आउट ए प्राइमा फेसाई केस, अगर केस होगा तभी तो आगे वो सम्मन में सम्मन भेजेगा, वारंट में वारंट भेजेगा, तभी तो वो प्रोसेस जारी करता है ना, इंक्वायरी में ही तो करता है ना। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, अगर जहां पर है कंप्लेंट केस देखो, चाहे पुलिस केस देखो, कहीं से देखोगे तो उसमें प्राइमा फेसाई केस, प्रथम दृष्टया, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम दृष्टया ही तो बोलते हैं, प्रथम दृष्टया केस बनता है कि नहीं बनता है वो पूछ रहा है।
राइट,
ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये जो स्टेटमेंट है सही है कि गलत है, इंक्वायरी जो कंडक्ट होता है वो चार्ज फ्रेम होने के बाद होता है कि पहले होता है?
पहले होता है,
पहले होता है सर।
क्या
पहले?
पहले होता है, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ कि इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये गलत है
सर।
हाँ, तो ये सही आंसर है। आप लोग खुद से भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि आप लोग कितना सही जा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि व्हेन ए कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड टू ए मैजिस्ट्रेट, अगर किसी कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया, प्रेजेंट किया जाता है, एंड द मैजिस्ट्रेट प्रोसीड टू एग्जामिन द कंप्लेंट एंड द विटनेस, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग ट्रायल, मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग इंक्वायरी, और मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी दे दिया।
इंक्वायरी,
ठीक है, इंक्वायरी बिल्कुल सही, मजिस्ट्रेट कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, लेकिन ट्रायल और इंक्वायरी में अगर फंसेंगे तो समझना होगा। यहाँ पर मैंने क्या वाला लाइन बोली, जिनको नहीं समझ में आया, जिसके लिए बाउंस हो गया उनके लिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ, कि जब कभी भी कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट, कंप्लेंट है कंप्लेंट, तो जब कभी भी कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के बेस पर प्रोसीड करता है, तब 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 की बात कह रहा है, तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। नाउ इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के हिसाब से कौन कंडक्ट करता है, हु इज कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन एज पर सीआरपीसी?
पुलिस ऑफिसर सर,
पुलिस ऑफिसर,
पुलिस और एनी पर्सन सर ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट।
एनी ऑथराइज्ड पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है?
यस सर, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे सर।
ओके, और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन?
कलेक्ट द एविडेंस,
collect the evidence
against
material fact,
against accused,
ये पूरी बात आ गई, अगर आ सकती है तो आ जाए, ठीक है, अच्छी बात है। Now next point, 2I में किस टर्म को डिफाइन किया गया, 2I
में judicial proceeding,
judicial proceeding
वो तो स्क्रीन पे भी आ रहा है। अच्छी बात है। सो एक क्वेश्चन और रखा है, हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग,
नॉट ए
जुडिशियल प्रोसीडिंग, पक्का
जुडिशियल प्रोसीडिंग है सर,
इट इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, हियरिंग बिफोर ए आर्बिट्रेटर इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग,
जुडिशियल है सर,
जुडिशियल। बाकी लोग जुडिशियल, कृष्णा, कृष्णा की तो आवाज गायब हो
गई, नहीं सर जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है सर,
नहीं है
सर,
नहीं है, नहीं है, नहीं है, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता है ये, ठीक है, ये
एविडेंस ऑन ऑफ नहीं दिया
जाता है उसको, सर आरसीसी में तो दिया हुआ है कि जज की डेफिनेशन में
आर्बिट्रेटर है ना,
वो उस पे नहीं जाना, जुडिशियल प्रोसीडिंग का सामने आपके डेफिनेशन है, देखिए उसमें लिखा गया है इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता उसके ऊपर। अच्छा ये बताइए, इंक्वायरी और ट्रायल क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर होते हैं या नहीं होते? इंक्वायरी और ट्रायल जो शब्द है, इंक्वायरी और ट्रायल, दीज प्रोसीडिंग आर कमिंग अंडर द प्रोसीडिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, दोनों
ट्रायल,
यस सर,
इंक्वायरी और ट्रायल दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं,
मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट की जाती है ना,
रीजनिंग नहीं बताना है या नहीं है ये बताइए बस, है तो है, ठीक है, दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये बताइए नॉन कॉग्निजिबल ऑफ केस किसको कहते हैं, नॉन कॉग्निजिबल केस
जिसमें
और नॉन कॉग्निजिबल केस को कहां डिफाइन किया गया है, केस को
112 में सर,
155 सब क्लॉज 4
नहीं
112 में सर,
डिफाइन कहां किया गया है
2LL 2L
2L में किया गया है, ओके। अब ये बताइए सीआरपीसी के तहत नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का नेचर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी या अंडर सीआरपीसी द नेचर ऑफ ए नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस इज व्हाट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस अंडर सीआरपीसी, सीरियस
सीरियस सर,
अच्छा और
सर
गलत आंसर है
सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर,
नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का नेचर क्या होता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, बताइए लो जी। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई,
फ्रॉम सीनियर पे बिलेबल होता है सर,
बिलेबल एंड सिंपल, ऑफेंस नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का नेचर क्या होगा, आपसे ऑफेंस पूछ रहा है तो ऑफेंस क्या होगा, बिलेबल और क्या होगा, सिंपल, हेनियस नहीं होगा,
और विदाउट वारंटी से मतलब विद वारंटी वो कर सकते,
नाउ नेक्स्ट पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पुलिस रिपोर्ट
सर, टू आर्मी
73 सब क्लास 2 में जो विटनेस रिपोर्ट सौंपता है उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, तो
मैजिस्ट्रेट, ऐसे ऐसे नहीं करना, कोशिश ये करो कि जो दिया है डेफिनेशन में, कहां है डेफिनेशन पुलिस रिपोर्ट की,
टू आर,
तो क्या कहता है 2R के अंदर क्या है, व्हाट इज इन 2R,
रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सब अंडर सेक्शंस 173 सब क्लॉज 2,
हां ये आप बोल सकते हैं, बढ़िया से आप बोल सकते हैं, और ये सही आंसर होगा, परफेक्ट आंसर होगा, सही नहीं परफेक्ट होगा। ऑफेंस शब्द को कहां पर डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के अंदर,
2N में सर,
ओके, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को
टू यू
नाउ सम्मन केस किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम्मन केस?
व्हिच इज नॉट वारंट केस
सर, जिसमें ऑफेंस पनिशेबल अप टू 2 years ऑफ इंप्रिजनमेंट.
फिर से लाइन बोलना, रिपीट करना
सर. ऑफेंस पनिशेबल अप टू 2 years ऑफ इंप्रिजनमेंट.
नहीं सर, वारंट
केस रिलेटिंग टू ऑफेंस व्हिच इज नॉट अ वारंट केस.
ये भी बोल सकते हैं. अप टू नहीं बोलना है, कोशिश कीजिए कि अप टू नहीं बोले. अप टू हम लोग कॉमनली बोल देते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे लीगल टर्म में जाएंगे तो नॉट एक्सीडिंग 2 years बोलेंगे. ठीक है, आंसर दोनों ही सही है. विच इज नॉट ए वारंट केस, ये भी आंसर सही है. नॉट एक्सीडिंग 2 years बोलना चाहिए, अप टू नहीं बोलना है. ठीक है, कोशिश ये करिए. ओके, विक्टिम जो शब्द है वो कहाँ डिफाइंड है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्टिम? विक्टिम शब्द कहाँ डिफाइंड है और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है?
विक्टिम जो एक्चुअल
सफर किया है, एनी टाइप ऑफ लॉस एंड इंजरीज,
जिसके साथ घटना घटित हुई है सर,
और उसके गार्डियन और लीगल हेयर.
ओके, नाउ एक और पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें पूछा गया है कि जो विक्टिम जो शब्द है जो कि 2WA के अंदर है, उसको किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है?
अमेंडमेंट एक्ट 2008.
और कब से इन्फोर्समेंट है, कब से लागू है वो?
31 दिसंबर 2009.
ये बहुत बार पूछा जाता है, तो जितने अमेंडमेंट है ना, कोशिश आप लोग करना कि याद कर लेना. ये बहुत बार पूछा जाएगा, इंटरव्यू में तो नहीं पूछते हैं सब क्वेश्चन नॉर्मली, लेकिन प्री में रहते हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ अगर कोई ऑफेंस जिसका दंड 2 साल से अधिक के जेल की सजा है, कारावास है, तो उसको कौन सा केस बोलते हैं?
वारंट केस.
वारंट केस. 2 साल से ऊपर की सजा हो, चाहे 1 दिन की सजा हो, चाहे 1 दिन की सजा हो, चाहे 1 महीने की सजा हो, तो वो कॉग्निजेबल हो सकता है. लेकिन इसको हम वारंट केस, वो जहां बोलेगा ना कि 2 साल से ऊपर है, तो आंख बंद करके वारंट केस में जंप कर जाना, ये वारंट केस ही होता है. नाउ और कुछ क्वेश्चन लेते हैं.
मोर देन 2 years पनिशमेंट इज वारंट केस.
अच्छा, नाउ अब एक और क्वेश्चन. देखिए, कहा गया है कि सारे ऑफेंसेस जो इंडियन पिनल कोड के अंदर डिफाइन किए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो सारे अपराध, सारे ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंदर डिफाइन किए गए हैं, उसका ट्रायल सीआरपीसी की प्रोविजन के तहत चलेगा. ये बात किस सेक्शन के अंदर मेंशन की गई है?
2Y.
नो, गलत आंसर, परफेक्ट गलत आंसर हो गया.
4 में
सर.
रिपीट करना, क्वेश्चन ये है कि आईपीसी के अंदर जिन सब अपराधों का डेफिनेशन दिया गया है, उन अपराधों का विचारण, उन अपराधों का ट्रायल सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत ही होगा. ये बात कहां कही गई है?
4(1) सर, सेक्शन 4.
आंसर होगा सेक्शन 4. ये जो आंसर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, सही आंसर है सेक्शन 4. और जो अभी आपने 2Y बोला, 2Y में सिर्फ ये लिखा गया है कि जिन अपराध, जिन परिभाषाओं को इस्तेमाल सीआरपीसी करता है, लेकिन उसका डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दिया, तो उसका मतलब वही होगा जो आईपीसी में है. यानी जिन शब्दों का, जिन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सीआरपीसी कर तो रहा है, लेकिन उसका डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं है, तो उसका मतलब हम वही समझेंगे जो आईपीसी में दिया हुआ. जैसे जज, जज शब्द को नहीं डिफाइन किया है, टाइम को नहीं डिफाइन किया गया है, और बाकी बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन नहीं किया है, तो उसका मीनिंग वही होगा जो आईपीसी के अंदर है. नाउ बाय द वे, सीआरपीसी को प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी?
सर, 25th जनवरी 1974.
अभी क्वेश्चन टेढ़ा सा क्वेश्चन है, ये MPAPO में पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया.
प्रेसिडेंट की एसेंट सर 1973 में मिली थी, 25 जनवरी.
अब जरा ठीक है उसको छोड़ दीजिए, मैं समझ गया आप लोग आंसर दे सकते हैं, यहाँ है ये रहा आंसर 25 जनवरी 1974, ये है आंसर सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, देखिए क्या टेढ़ा, ये प्री का क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको इंटरव्यू के मोड में ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का अमेंडमेंट एक्ट 2005, ध्यान से सुनिएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रेसिडेंट का एसेंट इसको कब मिला था, ये 2006-2007 में पूछा गया, तो रिसेंटली आपसे पूछ सकता है कि अभी 2019 वाला या 2018 वाला कब मिला है एसेंट, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। तो मेरे को पता है इसमें आंसर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये छूट न जाए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आंसर याद कर लेना। 2005 का मैं बता रहा हूँ, 2005 का अमेंडमेंट जो हुआ इसका एसेंट 23 जून 2005 को मिला था। तो जितने अमेंडमेंट को एसेंट मिला है प्रेसिडेंट से उसको लिख लेना एक साइड और उसका वो लिख देना। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये बहुत फेमस है तो ये सबको पूछने के चांसेज हैं क्योंकि इसमें निर्भया वाला कांड के बाद ही हुआ था अमेंडमेंट, तो लोगों को याद रह जाएगा। सो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 कब से इन्फोर्समेंट में आया, कब से लागू हुआ है?
3 फरवरी 2013।
बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये, ठीक है। अब ये बताइए कि सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी का संशोधन कौन कर सकता है, सीआरपीसी का संशोधन कौन कर सकता है, अमेंडमेंट कौन कर सकता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते
हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कोई आंसर?
पार्लियामेंट के द्वारा।
ओके, और कोई आंसर?
दोनों कर सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट में।
दोनों कौन कर सकता है? बैलेंस चलना चाहिए। हाँ जी बोलिए
सर, पार्लियामेंट में सर हो सकता है सर?
सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता
सर? तो मतलब सर क्रिमिनल प्रोसीजर को सर अमेंडमेंट करना चाहते है सर, वो पार्लियामेंट कर सकते हैं, और कुछ पार्ट है ऐसा जो सर स्टेट मतलब स्टेट अमेंडमेंट करना चाहता है
तो सर स्टेट अमेंडमेंट। सर क्या है आपका, पार्लियामेंट करेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर करेगा कि दोनों करेगा?
बोथ सर।
देखिए आप में से बहुत से लोगों ने बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये आंसर गलत हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ जी, आंसर गलत हो जाएगा, दोनों बोलिएगा तो भी गलत हो जाएगा, इंटरव्यू में फटाफट गलत काट देंगे, इसका नंबर नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि मैंने तो आंसर सही दिया था, लेकिन ये आंसर गलत है टेक्निकली, क्योंकि गवर्नमेंट इज समथिंग डिफरेंट। देखिए शासन और प्रशासन में फर्क है भाई, शासन और प्रशासन में फर्क है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट नहीं बोलना है, यहाँ पर आपको लेजिस्लेचर का शब्द इस्तेमाल करना है, यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, पार्लियामेंट एंड एनी स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए आपका इंटरव्यू, लोगों का इंटरव्यू खराब जाने का रीजन क्या है मैं बताता हूँ, हम लोग इंटरव्यू में टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि यू आर गोइंग टू बी ए जज, तो आपको जुडिशियल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए इन कंपैरिजन टू जनरल इंग्लिश वर्ड, और उसका मीनिंग समझिए। जैसे अब हम लोगों ने बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप में से किसी ने बोला तो कोई बात नहीं, गलती यहीं करेंगे और कहीं तो करेंगे नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है, या तो संसद करेगा या तो किसी भी स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर वो करेगा, ठीक है, इस चीज को जरा ध्यान देना। नाउ अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआरपीसी 1973 का मेन मकसद क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मकसद क्या है सीआरपीसी 1973 बनाने का, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं।
आईपीसी में जो भी ऑफिस दिए गए हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, उसके पनिशमेंट को
इन्फोर्स। नहीं 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 नहीं, और कोई आंसर और किसी के पास?
टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर।
नो, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक और प्रियम्बल में फर्क होता है, आप लोग जो प्रियम्बल पढ़ के बता रहे हैं वो प्रियम्बल नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1973 सीआरपीसी, मेन कैरेक्टरिस्टिक,
सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी।
ये देखिए, ये जो आंसर निकाल के दिया मैडम ने, आंसर सही है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को अलग करना ही मेन पावर, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। यानी मैंने बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, मॉन्टेस्क्यू थ्योरी भी है, ऐसे नॉर्मल थ्योरी भी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी।
हाँ जी, एक बार आंसर बोल दीजिए।
इसका आंसर है सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ से, चलिए क्वेश्चन आता है सिंपल सा, पूछा गया है सीआरपीसी किस लिस्ट के अंदर फॉल करता है, संविधान के किस लिस्ट में फॉल करता
है, थर्ड लिस्ट।
ठीक है, नाउ अब ये बताइए कि सेक्शन 6 सीआरपीसी में क्या है
सर, के कोर्ट ऑफ केसेस का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स,
क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स।
ये आंसर सही है जिसका भी है, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स, एकदम परफेक्ट आंसर है, ऐसे ही देना है, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक और लेते हैं पार्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, किसको अथॉरिटी है,
स्टेट गवर्नमेंट,
द स्टेट गवर्नमेंट,
यस सर,
हाँ बिल्कुल ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही आंसर है, द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जजेस इन द कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय हूम,
हाईकोर्ट,
हाईकोर्ट।
एंड सेकेंड क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है, असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है,
स्टेट गवर्नमेंट,
हाईकोर्ट,
हाईकोर्ट करेगा, हाईकोर्ट करेगा, कभी भी जुडिशियरी में हस्तक्षेप नहीं करता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब बोलना ही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हु विल अपॉइंट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन ए डिस्ट्रिक्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन करता है,
हाईकोर्ट,
और एडिशनल सीजेएम का, एडिशनल सीजेएम,
उसका भी हाईकोर्ट करेगा,
उसका भी हाईकोर्ट करेगा और उसका भी हाईकोर्ट करेगा,
यस सर, स्टेट गवर्नमेंट अगर देखती है कि उसे रिक्वायर्ड है तब,
उतना नहीं बताया मैडम, शॉर्ट में बताइए ना, इंटरव्यू में इतना बोलने का टाइम ही नहीं रहेगा, वो समझ जाएगा एक ही पॉइंट से कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। आंसर है हाईकोर्ट ही करेगा, मैंने क्या बोला, जुडिशियर साइड का कोई भी मालिक जो होता है हाईकोर्ट ही होता है अपने अपने स्टेट के अंदर, और हर एक हाईकोर्ट का जो मालिक होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, इस चीज को ध्यान दे लेना। नाउ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, हर एक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो किसके अधीनस्थ होके काम करता है,
सीजेएम सर,
सीजेएम, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए काम करता है, उसके अंदर काम करता है, ठीक है। नाउ अब एक और बात बताइए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कामों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में बिजनेस का बंटवारा कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन करता है,
सीजेएम सर,
सीजेएम सर,
सीजेएम करता है, कंफर्म है, सेशन कोर्ट क्या करता है फिर, पक्का है कि सीजेएम करता है, हाँ जी बोलिए, मैंने बोला कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में काम का बंटवारा कौन करता है, बिजनेसेस कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, हाँ,
गवर्नमेंट विद कंसल्टेंट विद हाई कोर्ट,
मतलब डेली का अगर डेली का मैटर कौन देखेगा, नहीं देखा वो सरकार देखेगी, योगी आदित्यनाथ देखेंगे, हाँ जी,
सीजेएम,
सीजेएम, हाँ सीजेएम, सीजेएम इज द राइट आंसर, थोड़ा बच के रहो आप लोग, ठंड का मौसम आ गया भाई, एक तो कोरोना ऊपर से ठंड का मौसम आ गया है, धीरे धीरे थोड़ा बी केयरफुल। नाउ अब ये बताइए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करने के लिए ऑथोराइज कौन है? Who is authorized? मेरी क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, फिर आंसर देना, हड़बड़ नहीं करना, कभी भी क्वेश्चन बिल्कुल शालीनता से सुनना चाहिए इंटरव्यू में, पहले उनको पूरा बोल लेने दो, बीच में नहीं टोक के बोलना है। सो अब सुन लेना पहले, हु इज ऑथोराइज टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ए डिस्ट्रिक्ट?
हाई कोर्ट,
स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट,
स्टेट गवर्नमेंट करेगा हाई कोर्ट से परामर्श लेकर।
डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा बड़ा सीधा सा है भाई, हु इज ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट, हु इज ऑथोराइज्ड, मैंने लिख भी दिया है, हु इज ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट पीपी इन ए डिस्ट्रिक्ट, पीपी इन ए डिस्ट्रिक्ट कौन है?
स्टेट गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट। अब जाके सही आप लोगों ने आंसर दिया है, अब जाके सही बोला। सेक्शन 25 में किस बात का प्रोविजन है? सेक्शन 25 सीआरपीसी,
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर।
बिल्कुल ठीक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर?
सर जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं रहेगा,
यस और नो बताइए तो मेरे को।
नहीं,
पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यस और नो?
नो,
यस सर, यस सर,
यस। क्यों सर?
क्योंकि सर अगर वो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट नहीं ले रहा है तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं, और इफ इज अबाउट द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर।
सभी केसेस में नहीं कर सकते सर, जब वो अवेलेबल नहीं रहेगा तब उसके पास पावर जाएगी, वो भी मजिस्ट्रेट के कहने ऑर्डर पे,
जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं रहा हो।
तो पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यस सर नो? अपॉइंट किया जा सकता है ना?
Yes, yes, yes,
भाई एक केस के लिए करे चाहे दो दो केस के लिए करो, उससे मतलब नहीं है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
हाँ सर कर सकते हैं,
कर सकते हैं। ये बात है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस ऑफिसर को बनाया जा सकता है, ये बात भी क्लियर है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। अच्छा ये बताइए कौन अपॉइंट करेगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को? अगर कोई पुलिस ऑफिसर को अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना है, हु कैन अपॉइंट?
डीएम सर,
डीएम करेगा?
यस सर,
श्योर?
श्योर सर,
अच्छी बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा तो और अच्छी बात है। और कोई?
डीएम करेगा,
डीएम करेगा, अच्छा ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ रहा है बहुत बढ़िया सा, क्वेश्चन आ रहा है कि आईपीसी के अंदर, अंडर आईपीसी जब कोई ऑफेंस पनिशेबल होता है जेल और फाइन दोनों से, तो अगर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट यानी हम जेल के कारावास की, जेल की सजा की बात करें, तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कितना होगा?
वन फोर्थ सर,
वन फोर्थ,
उनकी कॉम्पिटेंसी, जजेस की कॉम्पिटेंसी के का जितना भी रहेगा।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है, आंसर सही है, बिल्कुल सही है, नो डाउट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी अपराध की सजा सिर्फ और सिर्फ फाइन है और वो फाइन नहीं चुकाया जाता है अक्यूज के द्वारा, कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा, तो जेल की सजा कितनी होगी?
अगर 50 रुपीज से लेस देन तो 2 मंथ, 50 रुपीज से 100 है तो 4 मंथ, और अबव है तो 6 मंथ।
6 मंथ,
सबको ये पता था कि सुनने के बाद आंसर दिया है?
नहीं सर ध्यान आ गया, इन्होंने बोला तो ध्यान आ गया।
ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन केसेज ऑफ कन्विक्शन, ध्यान से सुनिएगा, कृष्णा सीन से गायब है, बार बार नाम लेके बोलना पड़ रहा है। इन केसेज ऑफ कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन ऑफ सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल, ध्यान से सुनिएगा, in cases of conviction of a person of several offences at one trial, in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than कितने साल?
14 years.
Period than?
14 years.
Years.
बिल्कुल सही, 14 years. Now, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के मैटर को डिस्कस मतलब कौन देख सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मामलों को कौन देख सकता है?
सेशन कोर्ट सर.
सेशन कोर्ट.
ठीक है, सेशन कोर्ट. अच्छा ये बताइए, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का पावर क्या है?
सेकंड क्लास
1 year
and 5000 fine.
आराम से, आराम से. हां
1 year
इम्प्रिजनमेंट
प्लस 5000 फाइन.
और असिस्टेंट सेशन जज का पावर क्या है?
10000
and
fine.
Under which section?
Sir,
11.
10 का 3 sir. 10 का 3.
10 में है, देख के बताइए.
Assistant session judge बोला है ना
sir? हाँ, assistant sessions judge का power कहाँ है?
28 sir, clause 3.
28 का subsection 3. ठीक है, अच्छी बात है. 28 में है और 29 में magistrate की बात होती है. चलिए, ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट समबडी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस. किस तरह के अपराध के मामले में पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है?
कॉग्निजेबल ऑफेंस.
बिल्कुल ठीक है. नाउ सीआरपीसी के तहत पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट. कब ऐसा हो सकता है? पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना ऑर्डर लिए हुए मजिस्ट्रेट से और बिना किसी वारंट के, किस प्रोविजन में?
सेक्शन 41.
हाँ ठीक है, बिल्कुल सेक्शन 41 आंसर सही है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कहता है कि विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम अरेस्ट?
45.
तो आज का है तो आप लोग के दिमाग में रहना भी चाहिए. ये बताइए विच ऑफ द सेक्शन इज डीलिंग विद द वॉइस आइडेंटिफिकेशन पैरेड इन सीआरपीसी?
54A.
बिल्कुल सही आंसर है. ये बताइए अंडर सेक्शन 53 सीआरपीसी, ध्यान से सुनना, अंडर सेक्शन 53 सीआरपीसी एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज जो मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है वो किसी पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर करता है, तो वो पुलिस ऑफिसर का रैंक क्या होना चाहिए?
Not,
या किसी भी रैंक का हो सकता है?
नॉट रैंक ऑफ एसपी.
एसपी
सर, वो
नॉट
बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर.
नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, बिल्कुल सही आंसर है. नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, एकदम सही आंसर है. सब इंस्पेक्टर से नीचे का अधिकारी नहीं आएगा किसी भी सेक्शन के अंदर. नाउ Which one of the following section, one of the following है तो option में दे रहा हूँ, which one of the following section of CRPC provides identification of arrested person? Section 54, section 54A, section 55 और section 60?
54A.
अच्छा, test identification parrot जिसको हम लोग short में TIP भी बोलते हैं, test identification parrot किस केस में होता है? यानी इन्वेस्टिगेशन में होता है, इंक्वायरी में होता है, ट्रायल में होता है, कि सब में होता है?
इन्वेस्टिगेशन में होता
है.
इन्वेस्टिगेशन फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन.
हाँ बिल्कुल सही है. नाउ ए पर्सन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर मे केप्ट इन कस्टडी फॉर, अरेस्टेड पर्सन को पुलिस वाला कितने समय तक के लिए अपनी कस्टडी में रख सकता है?
24 hours.
मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के सिवाय.
स्पेशल परमिशन सर.
24 hours.
क्वेश्चन ध्यान से सुनना, A person arrested by a police officer may be kept in custody for.
Magistrate special order, sir. You can. रख सकता है सर, रख सकता है सर.
पुलिस ऑफिसर कितने समय तक के लिए रख सकता है? मजिस्ट्रेट की बात नहीं पूछ रहा हूँ. अगर
मजिस्ट्रेट 24 आवर्स
हाँ
24
आवर्स मोर देन 24 आवर्स
नॉट मोर देन या सिर्फ 24 आवर्स
24
आवर्स
वो 24 घंटे तक के लिए रख सकता है. 24 घंटे से एक सेकंड ज्यादा नहीं रख सकता है. ठीक है, ये भी अच्छी बात है. ये बताइए वो कौन सा सेक्शन है? हिंदी में शेयर कर दे रहा हूँ. अंडर सेक्शन 60A CRPC ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड. बताइए अंडर सेक्शन 60A CRPC ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाय
पुलिस ऑफिसर. सर जो पर्सन भाग गया होता है, मतलब जिसे अरेस्ट
60A है मैडम. 60A
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड
सर, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी और
एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
और एनी अदर लॉ व्हिच यस एनी अदर लॉ व्हिच इज इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ये बताइए सेक्शन 41 सीआरपीसी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सेक्शन 55 सीआरपीसी. ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन. सेक्शन 41 लास्ट क्वेश्चन है. सेक्शन 41 सीआरपीसी is not controlled by section 55 CRPC. किस मामले में? When the arrest is made with a warrant, when the arrest is without a warrant, when the arrest affect the investigation, या इनमें से कोई नहीं. ये 2019 का क्वेश्चन है पंजाब जुडिशियल सर्विसेज का.
Without a warrant.